इसने अभी क्या कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? 8 रुपए या उससे कम की चीज। विपिन की बात सुनकर कुछ आवाजें आई जैसे लोगों के गले में कुछ फंस गया हो। सभी लोग उसे भौंचक्के होकर देख रहे थे। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो किसी पागल को देख लिया हो। इसने सच में यही कहा ना? खजाना सट्टेबाजी में लोग रोमांच और अपनी किस्मत आजमाने आते थे। कोई भी कितनी भी छोटी चीज चुने, ये वो कम से कम 100 रुपए की जरूरत होती थी। 8 रुपए, उससे भला यहाँ क्या मिलेगा? इसका दिमाग सही सलामत तो है ना? 8 रुपए, हाँ हाँ, इससे बेहतर तो होगा तुम एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो और यहाँ से चलते बनो। इसने किस मुंह से यहाँ 8 रुपए की चीज मांगी? यहाँ इतनी सस्ती तो एक चीज भी नहीं होगी। 1 मिनट बाद ही वहां खड़े लोग हंसने लगे, इतनी जोर जोर से कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। लड़के, तुम इतने मजाकिया कब से हो गए? यहाँ पर तुम 8 रुपए कैसे ढूंढोगे? अगर तुम्हारे पास 80 रुपए भी होते तो भी तुम यहाँ की एक भी चीज नहीं खरीद पाते। क्योंकि हंसने को नजरअंदाज करके विपिन ने सिर उठाकर डीलर से पूछा, क्या इतने बड़े कैलकुलेशन हॉल में तुम्हारे पास 8 रुपए की एक चीज भी नहीं है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उसके पास कुल मिलाकर 8 रुपए ही थे। वो चाहकर भी एक और फूटी कौड़ी नहीं दे सकता था। हाँ हाँ, विपिन की इस बात को सुनकर भीड़ और भी लोटपोट होने लगी। उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ये तो वही बात हुई जैसे कोई 1 रुपए लेकर मकान खरीदने निकला हो। भाई, तुम्हारे सिर में सब ठीक ठाक तो है ना? ये नजारा देखकर मास्टर बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ पर 8 रुपए की कोई भी चीज मिल जाए। एक काम करो, तुम यहाँ इस ढेर में से कोई भी चीज चुन सकते हो, मैं उसके पैसे दे दूंगा। अगर तुम्हारा फायदा हुआ तो सारे नफे को तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो बस अपना माफी मांगने का वादा पूरा कर देना। मास्टर इतना कहकर शांत हो गए और दोनों हाथ किसी महापुरुष की तरह पीछे करके खड़े हो गए। मास्टर से यही उम्मीद थी, वे अब भी दयालु ही हैं। ये लड़का जोकर है और जो खुद का मजाक बनवाने यहाँ आया, मैं मास्टर के आदर्श के सामने नतमस्तक हूँ। ये सुनकर कि मास्टर अपने विरोधी के लिए भी पैसे देने के लिए तैयार हैं, भीड़ उनकी उदारता देखकर हैरान भी थी और उनका सम्मान भी कर रही थी। तुमने देखा मास्टर का व्यक्तित्व देखो और फिर इस लड़के को देखो। छोड़ो, इनका तो कोई मेल भी नहीं है। अगर किसी ने तुलना भी करने की कोशिश की तो उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। विपिन ने खुशी से पूछा, क्या आप सच में पैसे भरेंगे? विपिन जानता था कि सामने वाला ठग था, इसलिए उसके पैसे खर्च करने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मास्टर ने एक संत की तरह कहा, जैसे वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही धरती पर उतरा हो। हाँ बिल्कुल, मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आज मैं एक चीज चुन लेता हूँ। विपिन ने भी हंसते हुए कहा। वो प्लेटफॉर्म के पास गया और चीजों को देखने लगा। क्योंकि मास्टर ने भी छोटी सी चीज ही चुनी थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उसे भी एक छोटी चीज ही चुननी होगी। वैसे भी चीज जितनी बड़ी होगी उसे साफ करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ये लड़का तो बड़ा बेशर्म निकला। हाँ, पता नहीं मास्टर इससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे किसी आदमी से मिला होता तो मैं तो कब का उसे कस कर एक चांटा मार चुका होता। पहले तो मास्टर को ही बदनाम किया और अब उन्हीं के पैसे ले रहा है, बेशर्म। लड़के को बिना किसी शर्म के चीजें चुनते देख लोग उसे तरह तरह की बातें कहने लगे। वे पहले भी बेशरम से मिले थे, लेकिन इतना बेशरम इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने ही पहले मास्टर को ढोंगी कहा। चाहे जो भी हो, तुम उनके विरोधी हो। तुम दोनों को आपस में लड़ना चाहिए था। इन हालातों में तुम उल्टे उन्हीं के पैसे से चीज खरीद कर उन्हीं को हराने की सोच भी कैसे सकते हो? इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुम में? लोगों की बातों को अनसुना कर विपिन हर एक चीज को छू कर देखने लगा। जैसे ही वो किसी चीज को छूता उसकी एक किताब उसके दिमाग में आ जाती। जल्द ही उसने अपनी हथेली के साइज की एक चीज उठाकर डीलर को दे दी। डीलर ने उस चीज को देखा और मुंह बनाकर कहा, इसकी कीमत भी 200 रुपए ही है। विपिन ने बेशर्मी से इशारा करके कहा, मास्टर जल्दी कीजिए, इसका बिल दे दीजिए। मास्टर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसे तो लगा था कि वो सामने वाले का मजाक बना पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़का इतनी बेशर्मी से उसके पैसे लेने के लिए मान जाएगा। और अब ये लड़का उन्हीं को हुक्म दे रहा था जैसे मास्टर इनके नौकर हो। उसका गला घोंटकर मारने की अपनी इच्छा पर काबू पाकर उन्होंने चुपचाप बिल भर दिया। विपिन ने डीलर से कहा, ठीक है, इसे यहीं साफ करवा लेते हैं ताकि कोई मुझ पर नतीजे से छेड़छाड़ करने का आरोप ना लगा सके। विपिन की हरकतें देखकर डीलर को भी गुस्सा आ रहा था। देखते हैं ये चीज साफ हो जाने के बाद तुम्हारा घमंड कहाँ जाता है। इतना कहकर वो सफाई करने वाले औजार लेने हॉल के अंदर चला गया। 1 मिनट में ही वो सामान लेकर आया और वहीं उस चीज को साफ करने लगा। जल्दी ही उस चीज पर से मिट्टी और घास की परत निकलने लगी और धीरे धीरे उसका सही आकार सामने आने लगा। वो एक पारदर्शी पत्थर निकला जो हल्के से चमक रहा था। पत्थर को देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें बाहर निकल आईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो नीलमणि है। पत्थर को देखकर भीड़ में से ही कोई चिल्लाया। कुछ लोग रत्न को पहचानते थे, कुछ नहीं। ये नीलमणि क्या होता है? एक आदमी हैरानी से बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता नीलमणि आत्मा के लेवल का हथियार बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। हर एक नीलमणि बेहद कीमती होती है और आसानी से नहीं मिलती है। उनकी मांग हमेशा ही रहती है। हथियार 5 लेवल के हो सकते थे, देवता, संत, प्रेत, आत्मा, इंसान। इस पूरे देश में इंसानी लेवल के ही स्टेज 4 के हथियार नहीं थे, तो आत्मा के लेवल की तो बात करना ही बेकार था। अगर कभी एक बन भी गया तो उसकी कीमत कोई चुका नहीं पाएगा, इसलिए ही नीलमणि इतनी बेशकीमती थी। आत्मा के लेवल के हथियार का मेन हिस्सा होने के कारण जिस पल नीलमणि को बेचने की बोली लगाई जाएगी उसी पल कई खानदान और एक्सपर्ट उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसकी कीमत कितनी होगी? वो लोग तो इस रत्न को नहीं पहचानते, वे बाकी लोगों से पूछने लगे। ऐसे दुर्लभ रत्न की कीमत बताना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी ने अंदाजा लगाया। मैंने सुना था कि कुछ साल पहले दूर किसी देश में एक नीलमणि को बेचा गया था। वो अंडे के साइज का ही था और उसकी कीमत 50,000 रुपये लगाई गई थी, लेकिन इस रत्न का साइज तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और इसकी पारदर्शिता तो देखो, जो भी हो ये कम से कम 1,00,000 रुपये का तो हो गई। इतना बोलते बोलते ही बोलने वाले के मुंह में पानी आ गया। 1,00,000 कीमत सुनकर कई लोग तो गिर ही पड़े। 200 रुपये की कोई चीज 1,00,000 रुपये की बन गई, 500 गुना ज्यादा मुनाफा, वो भी एक ही मिनट में। क्या ये सब सच में हो रहा था? उस रत्न को देखकर डीलर के हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये एक कैलकुलेशन हॉल का डीलर होने के कारण उसे खजानों की पहचान और उनकी कीमतें बहुत अच्छे से पता थी। उसे पता था कि उस आदमी के शब्द 100% सच थे। ये चीज वाकई में उससे भी ज्यादा कीमती थी। नामुमकिन, मैं जरूर कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। भीड़ और डीलर की बात सुनकर मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि ये लड़का कुछ भी नहीं चुन पाएगा और उसे फिर एक बार अपनी महानता दिखाने का मौका मिल जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना कीमती खजाना ढूंढ सकेगा। दोनों चीजों की कीमत 200 रुपये ही दी गई, लेकिन जहां एक तरफ उसकी चीज वो सिर्फ 2,000 में बेचा जा सकता था, वहीं उस लड़के की चीज की तो कीमत का अंदाजा 1,00,000 रुपये थी। उसे बेचना तो शायद मुमकिन ही ना हो, इतना अंतर। विपिन को पता था कि वो चीज क्या थी, उसे तनिक भी हैरानी नहीं हुई। उसने डीलर के हाथ से नीलमणि लिया और भीड़ को दिखाते हुए कहा, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मैं ये बेच सकता हूँ, मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। जिसने सबसे पहले नीलमणि को पहचाना था वही आदमी चिल्लाया। 1,00,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन नीलमणि उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान था। भीड़ में से और भी कई लोग बोलने लगे, 1,10,000 दूंगा, 1,12,000, जल्दी बोलो, 1,53,000 तक पहुंच गई। वही आखिरी कीमत बनी और रत्न एक अमीर व्यापारी ने ले लिया। ये राजधानी के सबसे बड़े बैंक का नोट है, इसे देकर तुम 1,53,000 रुपये कभी भी किसी भी बैंक से निकलवा सकते हो। उस अमीर ने रत्न अपने हाथ में लिया और उसके बदले में विपिन को एक नोटों का बंडल पकड़ा दिया। इतनी बड़ी रकम लेकर घूमा नहीं जा सकता, इसलिए ही इस दुनिया में भी बैंक के नोट दे दिए जाते थे, जैसे विपिन की दुनिया में पुराने टाइम में नोट और चेक हुआ करते थे। एक नज़र देखकर ही विपिन को पता चल गया कि वो नोट असली थे या नहीं, और फिर उसने सारे नोट अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने 1,10,000 की कीमत का नोट निकाला और मास्टर के पास गया। वो नोट मास्टर को देते हुए बोला, आपने 200 रुपये मुझे दिए थे, ये लो 1,000 की रकम का नोट, इसे अपने पास रख लो, बचे हुए पैसे टिप समझ कर रख लेना।